आगे चलते हैं, आयत नंबर 35 से 44। टॉपिक लिखिए बदतरीन माबूद नफ्स के पुजारी। यानी दुनिया में जितने भी खुदा पूजे गए, कुछ ना कुछ तो उनकी खूबी होगी, लेकिन एक माबूद की खूबी कभी ना किसी ने देखी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला हमें उससे बचा के रखे। वलकद आतैना मूसल किताब वजअलना माहु अखाहु हारून वज़ीरा। और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और इनके हमरा इनके भाई हारून को इनका वज़ीर बना दिया और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुटला रहे हैं। कौन? फिरौन। फिर हमने इन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया। और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने इनको गरक कर दिया और लोगों के लिए इनको निशान इबरत बना दिया और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। और आदियों और समूदियों और कुएं वालों को और इनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया और हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिन पर बुरी तरह बारिश बरसाई गई, मुराद कौम लूत। क्या ये फिर भी इसे देखते नहीं? हकीकत यह है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं। और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मसखरापन करने लगते हैं कि क्या यही है वो शख्स जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। ज़रा सा सोचिए, आज तो हम नबी सल्लम का नाम ले तो हमारे आंसू निकल आए, और नबी के दौर के लोग आपको देखकर कहते थे ये तुम जो अपने आप को रसूल कहते हो। नऊज़ुबिल्लाह। टोन देखिए, स्टाइल, मेरा तो दिल नहीं करता वो इख्तियार करके दिखाऊं कि क्या बुरा अंदाज इख्तियार करके नबी सल्लम को टोकते होंगे। वो तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे, वरना उन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर न छोड़ी थी। और ये जब अजाबों को देखेंगे तो इन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राह से भटका हुआ कौन था। अल्लाह ताला आप देखिए एक सवाल लेते हैं, अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअन्ता तकूनु अलैहि वकीला। क्या आपने इसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए हैं? क्या आप इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं वो तो निरे चौपायों जैसे हैं बल्कि इनसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए इस छोटे से रुकू में चार कौमों की बात हुई है। कौम नूह गरक की गई, मूसा की कौम को पानियों में डबो दिया गया, कौम लूत पर पत्थरों की बारिश हुई, और आद और समूद भी तबाह बर्बाद हुए चिंगाड़ से। तो नबियों के दुश्मन और उनका अंजाम। फिर अगली चीज़ जो हमारी इस पारे की आयत तदब्बुर भी है, अगली आयत जो है जिसमें हमने देखा ख्वाहिश परस्ती। इब्ने बस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जाहिलियत में अरब की ये हालत थी कि जहाँ किसी सफ़ैद गोल मोल पत्थर को देखा तो इसके सामने झुकने और सजदे करने लगे, इससे अच्छा कोई नज़र पड़ गया तो इसके सामने झुक गए और अव्वल को छोड़ दिया। ये है अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। आप कह लीजिए कि कुछ लोग अपना खुदा भी बदल लेते हैं, पहला खुदा अच्छा ना लगे तो दूसरा ले लेते हैं, एक से दिल भर जाए तो दूसरा ले लेते हैं। और याद रखिए कि कुफर और शिर्क शक्लें बदलता रहता है। आप नेचुरल चीज़ रोज़ खा सकते हैं, सादे रेगुलर मिजाज के कपड़े रोज़ पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत फैंसी और बहुत ही आर्टिफिशियल खाने खाने लग जाएं रोज़ नहीं खा सकते। सच है कि झूठ? यही बात है। एक अल्लाह की बंदगी और इबादत सारी ज़िंदगी भी कर लें दिल नहीं भरता। इसके बरक्स जिन चीज़ों के पीछे खो कर हम ये सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ज़रा इसको ट्राई करें इसको करें, कुछ दिन बाद दिल भरता है फिर दूसरे को ले लेते हैं। और यही बात है जो आपके मेरे लिए यहाँ सोचने की है, समझने की है। बहुत सारे लोग अपने नफ्स को पूछते हैं। आप देखिए कि हवा बा मुकाबला हुदन। हवा क्या है? ख्वाहिश। हवाएँ होती हैं ना, ये उड़ती हैं, तो ख्वाहिशें भी बंदों को उड़ाती हैं। आज के दौर के अंदर बहुत बड़ी ये चीज़ है कि जिसको आप कह सकते हैं कि हर बंदा अपने आप को अपनी ख्वाहिश से जोड़ता है। कब बंदा ख्वाहिश को अपना खुदा बनाता है? जब सुन्नत से काट कर कुरान पढ़ेंगे तो ख्वाहिश से जोड़ना पड़ेगा। जुमला लिखिए, जम है ये, सुन्नत की रोशनी में कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह की मर्ज़ी समझ आएगी, सुन्नत से काट कर कुरान पढ़ेंगे तो अपनी ख्वाहिश समझ आएगी। सुन्नत ने आपके मेरे दीन को पूरा स्केल्टन दिया हुआ है, ढांचा है सुन्नत। आज आप इसको काटे मसाब कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, ठीक है, कौन सा अल्लाह? अब ये नबी बताएंगे ना कौन सा अल्लाह, अंतफिस समाई वनाखनु फिल अर्ज, आसमान वाला, कुल हुवल्लाहु अहद। अब नबी ने तो बता दिया, ये कहते हैं नबी की बातें छोड़ो, हदीस को काट दो। अब किससे पूछो गॉड कौन है, वो कहेगा ये पत्थर गॉड है, कोई कहेगा जीसस गॉड है, मनपसंद गॉड होंगे। याद रखिए, ख्वाहिश की पैरवी करनी असल में कुरान और सुन्नत को छोड़ना है। शैतान इबलीस क्यों बना? ख्वाहिश की पैरवी की वजह से। सिर्फ एक ख्वाहिश थी ना उसकी। फिर आप देखिए कि आज रोटी कपड़ा मकान, ख्वाहिशों के जंगल में ऐसे उलझे लोग कि पहले नीड्स पूरी करने के लिए घर से निकले कमाने को, और फिर वांट्स में चले गए और आज तक वापस नहीं आए। मैंने आज तक किसी को दुनिया कमाने के लिए निकलते देखा हो तो वापस नहीं आते देखा, और ख़ास तौर पे ख़वातीन। हम अपने शौहर की मदद करने जा रहे हैं, ये घर कर्जे पे है, ज़रा पे ऑफ हो जाए फिर वापस आ जाएंगे। वो घर तो पे ऑफ हो ना हो, ऊपर चार छः कर्जे और चढ़ जाते हैं। आज ख्वाहिशों पे पाँव रखिए। पहला पाँव, किसी ने कहा जन्नत कितनी दूर है, कहने लगे दो कदम दूर। कहा कैसे? कहा पहला कदम ख्वाहिश पे रखो तो दूसरा कदम इंशाल्लाह जन्नत में होगा। और इस पे बड़ी खूबसूरत रिवायत नोट कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारह, जन्नत घेर ली गई नफ्स पे बोझ पड़ने वाली चीज़ों से। कई नेकियाँ ऐसी हैं जो मुश्किल लगती हैं पर करनी है, हमारी औकात ही है, हमें इजाज़त ही नहीं छोड़ने की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और बाकी चीज़ें भी। इसके बर्क वहुफ्फत नारु बिशहवात, जहन्नम को घेर लिया गया शहवात के साथ, ख्वाहिशात के साथ। किसी ने कहा जन्नत में जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, इमेजिनेशन में लाइए, यही फिर बुक मार्क काम आएगा। आप देखिए गाड़ी है किसी की, यहाँ खड़े थे, ऊपर जाना चाहते हैं। कभी आप में से कोई हिली इलाकों में गया हो, आप देखिए गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग व्हील चाहिए होती है, अक्सर जीप्स लेके जाते हैं लोग, फोर व्हील गाड़ियाँ, बड़ा ज़ोर लगता है और आप बीच में कहीं रोक नहीं सकते, गाड़ी रोकेंगे तो वो फिसलनी हो शुरू हो जाएगी नीचे। क्या पता चलता है कि ऊपर जाने के लिए मेहनत और रेजिस्टेंस और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। ड्राइवर बेचारे इधर उधर भी नहीं देखते, यूं खाइयाँ होती हैं इर्द गिर्द, और ज़रा सी गलती होगी तो नीचे जाएंगे। लेकिन अगर किसी को ऊपर से नीचे आना हो, मैंने खुद देखा है बचपन में कि गाड़ी को न्यूट्रल में करके ब्रेक से पाँव उठा लेते हैं, खुद ही गाड़ी घूमती घूमती नीचे आ जाती है, सिर्फ स्टेयरिंग पे कंट्रोल करना होता। ये है जहन्नम। जिसको जहन्नम में जाने का शौक़ है, अपनी ख्वाहिशात और अपनी शहवात से ब्रेक उठा ले, सीधे धड़म से जहन्नम के घड़ों में गिरेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, ये देखिए आप इसी से देखें, आपको ये याद रहेंगे एक्शंस। मसलन ये मैं खड़ी हूँ मैदान हशर में, आप भी हैं, हमारा गुमान क्या है, गलत है, सही कीजिएगा। आज हम कहते हैं जिसको जन्नत में जाना है ना, एक अनाउंसमेंट होगी, चले जी वो अकीला जन्नत में जाएंगी, और अकीला कहेंगे ओ रियली थैंक यू सो मच, इधर से उठेंगी जन्नत में पहुंच गई, सीधे हाथ में पहुंच गई। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाम ले लूं उसका नाम बोला गया कि चलो फरिश्तों उसको जहन्नुम में भेज दो, वो फेल है, वो बेचारी रोती धोती यहाँ से उठेंगी तो वो इधर लेफ्ट टर्न ले लेंगे। हमें ऐसे लगता है कि एक बड़ा सा पार्किंग लॉट है, राइट साइड पे जन्नत है, लेफ्ट पे जहन्नुम है, ऐसा नहीं है। जन्नत ऊपर है, जहन्नुम नीचे है, ये इल्लीजीन है, ये सिज्जीन है। जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल है। क्यों आदम को कहा था वइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया खुदाया या फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आपको जन्नत में जाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, आमाल की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, फोकस्ड होना पड़ेगा, नज़रों को आगे झुकाना पड़ेगा, और लोग खाएं पिएं मंजर देखें बाहर घूमें फिरें, आप फोकस्ड हैं, जब तक आखिरी कदम जन्नत में ना चला जाए मैं और आप मुतमईनी। यही हम दिन रात मांगते हैं, दिन सिरातल मुस्तकीम। एक दफ़ा मांग ली, चैन क्यों नहीं पड़ रहा, इसलिए कि अभी गाड़ी बीच में है, यहाँ भी रुकेगी तो भी वही नतीजा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, जब तक ये जन्नत के पार्किंग लॉट में नहीं चली जाती। हज़रत उमर कहा करते थे मेरा एक कदम जन्नत में और एक बाहर हो, मैं फिर भी खुद को जन्नती नहीं कहूँगा जब तक मेरा दूसरा भी जन्नत में ना हो। हम 19 पारे पढ़ के कैसे जन्नत में चले जाएँ, अभी पीछे पड़े हुए 10 पारे। तो याद रखिए, जन्नत के लिए कमर कसिए, मेहनत कीजिए, अज़म इरादा, कोई नेकी का इरादा करें चल पड़िए। ये नहीं कि फिर सबसे पूछें और कोई नो कह दे और हम शुक्र करें कि चलो इसकी नो की वजह से मेरी जान भी बच गई। फिर आप देखिए आयत 41 में, مذاق اڑانے کی بات تھی۔ تو ایک صحیح روایت ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ تجھ پر سلام ہو۔ دعا کریں ہمیں بھی اسی کی توفیق ہو۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا، وہ تیری طرف سے گالیاں دینے والے کو جواب دیتا تھا، وہ جو گالی تجھے دیتا تھا فرشتہ کہتا تھا یہ نہیں بلکہ تو، یعنی یہ گالی تیرے لیے نہیں بلکہ کہنے والے پہ، اور جب تو کہتا تھا کہ تجھ پر سلام تو فرشتہ کہتا تھا اس پر نہیں بلکہ تجھ پر ہی سلامتی ہو اور تو اسی کا حقدار ہے۔ دعا کرے ہمارے اس طرح کے ظرف ہو جائیں کہ گالیاں دینے والوں کو ہم دعائیں دینے لگ جائیں۔ اور کیا سیکھا؟ اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کرنی، خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا، ہر بات اور ہر کام کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا ہے، اچھا طرز عمل اختیار کرنا ہے، حجت اور دلیل سے بات کرنی ہے، اور اپنے فرائض پورے شعور کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں آیت 45 سے 60۔ ٹاپک لکھیے، کھٹے رشتوں کو قرآن کے ذریعے میٹھا بنا لو۔ یہ کیا ٹاپک ہوا؟ جی، ہمارے کچھ رشتے کھٹے ہوتے ہیں اور کچھ میٹھے ہوتے ہیں۔ کھٹے ہیں سسرالی اور میٹھے ہیں میکے کے، ایسے ہی ہے نا؟ کتنے میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا سگے بھائی بہنوں سے ان کی نہیں نپتی، تو ذرا سب پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں کہ بیچ میں قرآن لے آئیے، بھائی بہنوں میں بھی مٹھاس آ جائے گی، ادھر بھی سارے جائیدادوں کے رشتوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور خون کے رشتے بھی اسی میں اچھے بنیں گے، اور سسرال کے ساتھ قرآن کا تعلق جوڑ لیجئے، پھر دیکھیے ساس بہو میں کتنا پیار ہوتا ہے اور نند بھاوج میں کتنا پیار ہوتا ہے۔ فرمایا، علم تر الارض کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ جب شام کو سائے ڈھلتے ہیں اس وقت یہ آیت سمجھ آئے گی کہ کیسے دن چڑھا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو کھڑے ہونے کا وقت۔ دعا کریں ہماری بھی صبح شامیں اسی ترتیب کی ہوں۔ آج ہمارا حال ہے کہ دن کو سوتے رات کو جاگتے ہیں، برکت کہاں سے آئے زندگی میں۔ اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی علائش نہ ملی ہو تو آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اور اسے نہا بھی سکتے ہیں، اور بارش میں بھیگتے ہوئے شخص کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس بارش سے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا ہی نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس اب کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ یہ ہے آیت تدبر۔ اور وہی ہے جس نے سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ وہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شباب کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے۔ قرآن پڑھانے والے کی یہی خواہش ہوتی اور ہونی چاہیے کہ مجھے تم سے کچھ جواب میں نہیں چاہیے، ہاں یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر تم راہ پہ آ جاؤ۔ میرا سب سے بڑا تحفہ تم ہو، اگر تم ہدایت پہ آگے تو میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنو گے۔ نبی اس طرح سے بے لوس ہو کر دین کی دعوت دیتے تھے، اور اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ یعنی دوسروں کو اپنے گناہ کھول کھول کر مت بتائیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیجئے۔ इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो जवाब देते हैं रहमान क्या है। याद रखिए, मक्का वालों को लफ्ज़ रहमान से बड़ी चिढ़ थी। क्या हम इसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे रहा है? और इस तबलीग ने तो इनकी नफ़रत में मज़ीद इजाफा कर दिया। तो क्या पता चला, इस हिस्से में हमने दो बड़ी चीज़ें पढ़ी हैं। आयत 52, वजाहत हम बिही जिहादन कबीरा। आयत कहाँ से शुरू होती है? फला तुतील काफिरीन, तो तुम काफिरों का कहा न मानो और क्या करो, वजाहद हम बिही, और उनसे जिहाद करो। इसके ज़रिए ही से मुराद इधर क़ुरान है, क्योंकि मक्की दौर में कोई और जिहाद नहीं था। अभी कुफ्फ वईदियकुम की पाबंदी लगी हुई थी, और जिहाद कैसा, जिहादन कबीरा, बड़ा जिहाद करो। क्या पता चला कि इस मुआशरे में जहाँ जहालत फैली हो, सबसे पहले क़ुरान के इल्म को आम करें, लोगों को इस किताब से जोड़े, उनकी जहालत ख़त्म हो, इस किताब के साथ उनका जो बुग़्ज़ था, जो इनाद थी, वो दूर हो जाए। फिर जब कुछ लोग बच जाएं जो फिर भी ना माने, तो फिर उनके साथ जिहाद करो। याद रखिएगा कि जिहाद की बात क़ुरान के खोलने से शुरू हो जाती है और किताल तक पहुंचती है। जब आप कुरान पढ़ने लगते हैं ना, आपके इर्द गिर्द वाले बेचैन हो जाते हैं। फिर अगर किसी दिन घर जाकर ज़रा सी तनकीद भी कर दी, तो और भी मसले शुरू हो जाएंगे। है कि असल में ये सूरह फुरकान है, समझिएगा। हक और बातिल की कशमकश कुरान का बड़ा मौजू है। आप दीन पर चलने की कोशिश करती हैं, बाहर की दुनिया में मुखालफत शुरू होती हैं। आप यहाँ से ईमान में डूबी भी उठती होंगी, बस आज के बाद देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अब मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ। मसलन जैसे कल सूरत नूर पढ़ी, आपको समझ आ गई कि औरत के लिबास हिजाब की क्या हदें हैं, औरत का जिस्म बाहर दिखना है कि नहीं। ड्राइवरों को क्या मज़ा देते हैं हम अपने जिस्म दिखाकर, पतले लॉन के कपड़े, चिपके हुए दुपट्टे, फंसे हुए ट्राउज़र। हमारे ड्राइवर कितने खुश होते होंगे, बग़ैर पैसे लगाए उनको मंजर दिखते हैं। सोचने की बात है, फितना है, बेटियों की इज्जत को ख़तरा है। आप घर में जो भी हैं उसको अलग रख लीजिए, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि अपने कपड़ों को ठीक करें। चलिए, आपने कह दिया कर लेते हैं। यहाँ से उठ के गई नियत लेकर, घर जाके कोशिश शुरू की, तो पहले तो दोस्तों ने कहना है ये क्या हो गया, मासी लग रही हो, अपनी उम्र से बड़ी लग रही हो। और कुछ नहीं होता, पर्दा तो दिल का। ज़रा सोचिए, पर्दा दिल का होता तो नमाज जो थी गुर्दों की होती, तो ज़कात जो थी फिफड़ों की होती, तो बाकी आप खुद ही जोड़ लें पूरा दिन। कितनी फजूल बात लोग करते हैं कि पर्दा दिल का। हाँ वाकई, फिर दिल पे पर्दे पड़ जाते हैं तो बंदा ये जुमला बोलता है। सीधी सादी शरीयत को इतना उलझा के रख देना। तो याद रखिए, जब आप इस किताब को पकड़ते हैं, फिर इस पे अमल करते हैं, और फिर जब ले के इसको साथ चलते हैं अंसारुल्लाह बन के, बस फिर देखिए मुखालफत, हक, हर बंदा हकूक लेने खड़ा हो जाएगा। आप घर में बैठे कोई मुखालफत नहीं। आज के दौर में कुरान की तालीम को आम करना जिहाद अकबर है जी। एक कौल भी है कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं, यानी जंग से वापस अपनी अमली ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं। तो याद रखिए कि माशरे में अंधेरे हैं, कुरान के चिराग जलाना, ये है जिहाद अकबर। इन चिरागों को जलाने में मुखालफतें होंगी, लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों, वजह इसलिए कि बहुत सारों के मुफाद पर जद पड़ेगी। कई ऐसे लोग हैं जिनके कपड़े ऐसे बिकने छूट जाएंगे, कई लोगों की फिल्में बंद हो जाएंगी, उनकी ज़ात पे, उनके बिजनेस पे हाथ पड़ेगा, वो आपको अपना दुश्मन समझेंगे। जैसे अब देखिए कि एक बच्चे के हाथ में छुरी हो और आप उसे छुड़ाना चाहें, तो वो और ज़ोर से पकड़ लेता है, वो खेलने के जोश में, पर आपको ख़तरा दिख रहा है जो छुरी को पकड़ने से होगा। तो उनके नज़दीक तो वो बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं। कल फिर मुझे किसी ने एक मंज़र दिखा दिया, अल्लाह ही के हुक्म से दिखता है। यकीन करें, नाते रसूल मकबूल, पढ़ने पढ़वाने सुनाने वाली, कंपेयर, होस्ट, शो वाली ख़वातीन में से एक खातून, स्लीवलेस कपड़े थे उसके। आप इस दीन को क्या कहते हैं, ये कोई दीन है? रमज़ान में आप एक ऐसा एक शो तो कर लेना कि कुछ तो रमज़ान में करना है। मुझे नहीं पता कितने आते हैं, कहाँ आते हैं, किसकी बात है, आई डोंट नो, बट जो मैंने देखा, मैं आपको अपने दिल का फफोला बोल रही हूँ। नबी का तो हाथ किसी औरत की तरफ बढ़ा था, तो आपने कहा था पीछे कर लो हाथ, मोहम्मद किसी औरत के हाथ को नहीं देखता। और आप उसी नबी की शान में नात पढ़ते हैं और आपका जिस्म अंदर से ऐसे झलक रहा है जैसे कुछ पहना ही नहीं है। और लोग बैठे झूम के नात पे यूं जैसे बेले दे रहे हैं, जैसे कभी किसी दौर में लोग शायरों को शायरी के ऊपर बेले और मुकर्रर मुकर्रर की बातें करते थे। ये बिजनेस, शो बिजनेस हो सकता है, ये दीन का काम नहीं है। ये दीन बड़ा आसान है कि रमज़ान आए तो एक दो शो करा ले, मुहर्रम आए तो काले कपड़े पहन लीजिए, और शबरात आए तो सारी रात के शवीने कर लीजिए, तो बाकी ज़िंदगी में डोंट टच अस। ये जिहाद अकबर है आज का। कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है, इससे भी कड़वी होनी चाहिए। लोगों से गुनाहों की छुरी छुड़ाना, ये है जिहाद अकबर। ये कश्मकश, आप देखिए 40 साल नबी की ज़िंदगी, नबूवत से पहले की, कोई आपका दुश्मन नहीं था, आंखों के तारे थे, एप्पल ऑफ दी आई थे, कोई आपको सादिक कहता तो कोई अमीन कहता, खल्फुल फजूल में आप सालिस बने, हिजरे अस्वद की तनसीब आपके प्यारे हाथों से हुई, लेकिन जो ही इकरा बिस्मि रब्बी कल लजी की आयतें नाजिल हुई, अपने भी बेगाने हो गए। वो कहते हैं ना कि अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश। क्यों? वो एक शेर है कि मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद, मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं जहर को कभी चीनी नहीं कह सकता, ये मतलब समझ लीजिए। आज भी और कल भी जो भी इस किताब को लेकर मुआशरे में निकलेगा, इख्तलाफ होगा, करना क्या है, जाहिद हुम भी जिहादन कबीरा। अगर आप वाकई नेकी का कोई काम करना चाहते हैं ना, तो अल्लाह की किताब बंदों तक पहुंचा दें। ये रिएक्शन है सिर्फ इस बात का कि हमें तो मिली नहीं। प्लान बनाइए, इरादे कीजिए, ये कमानत है जो अल्लाह ने आपके मेरे हाथ में रखी, इसको इंसानियत तक पहुंचाना है। ख्वाहिशों का बुत बीच में ना आ जाए तो ये काम बहुत खूबसूरत है। आपका दिमाग खुलेगा, तदबीरें आएंगी, अल्लाह आपको प्लान्स बताएगा, और जब आपका प्रोफेशन और पैशन एक हो जाता है ना, तो आप मिशनरी जील से काम करते हैं। जो चीज़ आपकी ख्वाहिश बन जाती है ना, उसके लिए दिमाग काम करना शुरू करता है। इसको लोगों की ख्वाहिश बना दीजिए, और इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारे साथ पढ़े लिखे लोग हों जो इस पूरे माशरे के अंदर इस कुरान के जाल को फैला दें। तालीमी इदारे हैं कि हॉस्पिटल्स हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हैं या बिज़नेस सेंटर्स हैं, ये एक टीम वर्क है। आज के दौर का जिहाद अकबर क्या है कि इस रास्ते में अमली तौर पर तल्ख लोगों से वास्ता भी पड़ेगा, तो फिर भी बर्दाश्त करो, सब्र कर लो। कभी आपका वास्ता अबू बकर से पड़ेगा, तो कभी अब्दुल्ला बिन उबई जैसे लोगों से भी पड़ेगा। तल्ख लोगों में अपनी मिठास को ना ख़त्म करें, ज़रूरत इस बात की है, फ़िक्र करें। अब आप यहाँ से कुरान पढ़ के निकली, करना क्या? आप तो बड़े शौक़ से निकली थी कि बस देखना, मैंने तो जाकर पता नहीं क्या कर देना। होगा क्या, आपको 5 मुख्तलिफ महाज़ों पे काम करना पड़ेगा। इस पर एक लेक्चर है, खुलासा दे देती हूँ। आप देखिए कि पौधे को पानी देना हो तो कहाँ देते हैं? पत्तों पे पानी देंगे आप? डालियों को धोएंगे? जड़ों में पानी देना है बस। इस मुल्क और इस उम्मत की ग्रास रूट तक कुरान का पानी भेज दें। जो असर रसूख वाले लोग हैं, इन्फ्यूशल, और आज के दो लोग हैं जो पूरी उम्मत को तिगनी का नाच नचा रहे हैं, एक एजुकेटर्स और एक मीडिया, उस्ताद और शो बिजनेस। ये दो बड़े मलाह हैं आज हमारे। या हम पढ़ पढ़ा रहे होते हैं, या फालतू वक्त में हम टीवी पे कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं। इन दो को सीधा करते हैं, हम खुद सीधे हो जाएं। फिर पहले हर एक तक पहुंचाइए, मिशन बनाकर इसका काम कीजिए। प्रोफेशन नहीं बनाना, बट प्रोफेशनली काम करना है। आज आप अपनी उम्र लिखिए। मैं आपसे कहूंगी ना, इसके लिए कितने लोग तैयार हैं, सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन अमली तौर पर बाद में मसले, फिक्रें, बच्चे, घर, फिर सबको साथ रखना है। एक सवाल करते हैं खुद से, चलिए हम अपनी उम्र 30 साल की सोचते हैं। आज तक 30 साल में तो मुझे वक्त नहीं मिला इस जिहाद का। 35 के हैं तो भी नहीं मिला, 40 के नहीं मिला, आगे कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। अगर 30-35 साल की उम्र तक आपको मुझे फुर्सत नहीं मिली ना इस किताब के लिए, तो माजरत है, आगे भी नहीं मिलेगी। इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच में इस काम को करना पड़ेगा। 23 साल में जो किताब कतरा कतरा करके नाजिल हुई, क्या हम उसको 2 से 3 साल में भी नहीं पढ़ सकते? कोई ऐसे नावल नहीं पढ़ता जैसे हम इस कुरान को पढ़ते हैं। माजरत के साथ, कभी किसी कुरान खानी में तो जाइए, शुरू में तो पढ़ लेंगे पारा पारा, फिर जब ख़त्म करना होता है कहते हैं ये सफ़ा तुम पढ़ो, ये मैं पढ़ती हूँ, फिर आगे पलटेंगे, ये तुम पढ़ लो, ये मैं पढ़ती हूँ। सुना हुआ कभी ऐसे? अब मैं दौरे कुरान करवा रही हूँ और वक्त कम है, तो मैं आप में से कुछ से कहूँ कि एक सफ़ा मैं इधर बैठ के पढ़ती हूँ, दूसरा उधर पढ़ ले, पारा पूरा कर ले। पारा तो पूरा हो जाएगा, अमल पूरा नहीं होगा। ऐसे तो कोई अखबार नहीं पढ़ता कि मियाँ को कहे कि मैं पीछे से पढ़ती हूँ, आप आगे से पढ़िए, जैसे हम ये कुरान पढ़ते हैं। आज हमने अपने कैरियर को जितनी अहमियत दी थी, अगर इतनी ही अहमियत इस किताब को दे देते तो आज हमारी ज़िंदगी बदल जाती। तो इसके लिए करें क्या, दो महाज़ हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। अंदर सबसे पहले तो मन अपना पुराना पापी, बरसों में नमाजी ना हो सका, ये है जिसको कहा क्या राई तो मन तहज़ई लाख हो। सबसे पहले आपको मुझे जिहाद करना है जिस महाज पे, वो मेरा आपका नफ्स है, इसको टेम कीजिए, सुस्ती को दूर कीजिए, शक को दूर कीजिए, आराम तलबी को दूर कीजिए, ख्वाहिश परस्ती को ख़त्म कीजिए, लग्जरियस लाइफ को ख़त्म करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो सबसे बड़ा हमारा महाज बिगड़ा हुआ मुआशरा, ख़ानदान, रस्म व रिवाज, शिर्क, अनपढ़ लोगों का मर्ज, और दीन के बारे में शकूक व शुबहात डालना पड़े लिखे लोगों का मर्ज, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और पांचवा जो सबसे बड़ा महाज इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है, वो फ़िरका वारियत का महाज है। कुरान पूरा पढ़ जाते हैं, फ़िरका नहीं बदलता, फ़िरका नहीं छोड़ना, जमात नहीं छोड़नी, ये ग्रोह नहीं छोड़ना, ये इदारे का नाम नहीं अपने नाम से उतारना, ये पहले झंडा लगाओगे तो हम जाएंगे तुम्हें पढ़ाने, ये है आज का महाज। इतने फ़िरकों में इस्लाम नहीं आ सकता, याद रखिएगा, जब तक सबको ब्लेंडर में डालकर एक खूबसूरत सी स्मूदी बनाकर पेश ना कर दें। हर एक की अच्छी चीज़ ले लीजिए, खामियों की सलाह कर लीजिए। एक तरफ ला खुदा नज़रियात से जिहाद है, डार्विनिज्म के नाम पे लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, एक तरफ फ्राइड की थेरियाँ पढ़ाई जा रही हैं। आप देखिए कि जदीद तालीम याफ्ता लोगों को साथ लगाइए, अगर आप दुनियावी तौर पर पढ़े हुए हैं ना तो आपके ऊपर बड़ी नज़रें हैं अल्लाह की, आप इल्म के मैदान में चलिए। और अगर आप में से कुछ कम पढ़े लिखे हैं ना तो अपने अपने गांव और अपने अपने देहातों और अपने अपने चुबारों में जाकर काम कीजिए, एक दफ़ा इस कुरान को समझ लीजिए। आज के मुसलमानों को इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में से निकालना जिहाद कबीर है। वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम, नहीं, मेकिंग देम प्राउड टू बी मुस्लिम, हैं मुसलमान तो लगे भी मुसलमान, ये है जिहाद। आज हमें से हल्का सा सर झटक के सर से वो दुपट्टा उतारते हैं जो अजान की आवाज़ सुनकर या मौलवी साहब के निकाह का खुतबा पढ़ने के दौरान सर पे रखा होता है, टिश्यू पेपर उठा के औरतें शादी में सर पे रख लेती हैं जब निकाह हो रहा होता है, क्योंकि अगर सर पे दुपट्टा ना हुआ तो निकाह टूट जाएगा, नऊज़ु बिल्लाह, हमारा तो ये गुमान है। इसके लिए काम कीजिए और काम कीजिए और काम कीजिए। कितने लोग तैयार हैं? और जो तैयार हैं अल्लाह उनसे काम ले ले, और जो नहीं तैयार अल्लाह उनको तैयार कर दे। कब्र की रात सोचिए कितना फारिग वक्त होगा, और तीन सवाल होंगे वहाँ, अगर इन्हीं तीन में उलझ गए तो अगले पांच सवालों के जवाब तो पता नहीं कौन देगा और क्या होगा। अल्लाह ताला आपसे मुझसे ये खिदमत कबूल करे, अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे, अपने आप को घुलाइए, जलाइए, कुर्बानियाँ दीजिए, हिजरतें कीजिए, घर बार से थोड़ा सा अपनी जान को आज़ाद कीजिए, ये सब इधर ही रहेगा, खा लेंगे, पढ़ लेंगे बच्चे, हो जाएंगे बड़े, हो जाएंगी शादियाँ इनकी, हो जाएंगे, पल जाएंगे इनके बच्चे, पालने दीजिए। देखिए मुझे एक बात याद आ जाती है जो शायद मैं हर साल ही सुनाती हूँ। एक दीनदार थे शख्स, और उनके दोस्त ने जो ख़ुद भी दीनदार थे, दोनों का शायद किसी तबलीगी जमात या किसी से ताल्लुक़ था, किस्सा मुख्तसर, अपने दोस्त से अपना दुख पेश करते हैं, कहते हैं कि बेटी नाराज़ होकर घर आ गई है तो मुझे मशवरा दो कि मैं आगे से क्या करूं, क्या तलाक ले लूं या क्या करूं। तो ये जिन्होंने बात सुनाई कहते हैं कि मैंने उससे पूछा मसला क्या है, कहता मसला क्या होना, वही छोटी मोटी आदतें, आदतों का इख्तलाफ, सोच नहीं मिलती, मिजाज नहीं मिलता। कहने लगे ये बताओ कि लड़का वैसे अच्छा मुसलमान है, कहते अच्छा मुसलमान है, नमाजी है, दीन पे सब है। बेटी कैसी है? कहा वो भी ठीक है, यानी जैसे एक हमारे कल्चर में होते हैं। तो कहने लगे कि अच्छा फिर मुझसे मशवरा मांगते हो ना, तो मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, ये बाप को भी मैं दूंगी सबको, और वो क्या है, अगर तो तुम बेटी का बाप बन के अपने आप को पेश करो ना तो फिर तो पूरी आज़ादी है, जाओ ज़रा उस दामाद का गिरेबान तो थामो और एक एक मसले पे जाके बोलो, बहस करो, सवाल जवाब लो, हिसाब करो, लड़की की माँ से भी पूछ लो कि इसको क्या मसला है तो उसको क्या है, तो फिर इस बेटी को पहले कोशिश कर लो, इधर नहीं बनती तो जाओ फिर तलाक दिलाओ, फिर इद्दत गुजरवाओ, फिर उस बेटी के लिए नया रिश्ता ढूंढो, तो फिर तुम तो एक बेटी के बाप होने का हक अदा कर दोगे। और अफसोस के साथ कहूँ कि 80% फारिग लोग यही करते हैं दुनिया में। अच्छा, कहा अच्छा दूसरा हल क्या है? कहने लगे अगर तुम एक दाई दीन समझ कर खुद को पेश करो, इस उम्मत का एक एक्टिव शख्स जिसके कंधों पे बड़ा काम है अभी, तो अपनी बेटी को आज जाके कह दो बेटा मेरा जो फ़र्ज था मैंने अदा कर दिया, मैंने आपके लिए अपनी कोशिश के मुताबिक एक बेहतरीन मर्द का इंतखाब किया, वो मेरी सोच थी मेरा था, अब आप बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि आप उसी के घर जाइए और उसी के साथ निभा की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है आपके इन मुकदमों को भुगतने का। ये है जवाब, जाहिद हम भी जिहादन कबीरा। हमारे तो ख़ानदानी अभी जिहाद नहीं ख़त्म हुए, अभी विरसे की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हुई, अभी तो रिश्तों के टूटने जुड़ने के सारे झगड़े नहीं ख़त्म हुए, हमसे कोई क्या उम्मीद रखे। और फिर जब इन सारी खपाइयों में पड़ते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, माइग्रेन हो जाता है, हमारे जिस्म में दर्द हैं, घुटनों में दर्द हैं, कामों में दर्द है, और कब्र में जाएंगे और सवाल होगा बताओ क्या इस किताब के साथ करके आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, इससे भी ज़्यादा क्या और बात की जाए। एक और टॉपिक है इसका जिस पे बात करने की ज़रूरत है, यानी इस कुरान को आपने मैंने कैसे लेना। एक फरियाद है कुरान की कि कुरान के ज़रिए जिहाद कैसे करें। कुरान की इस फरियाद को सुन लीजिए, ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों पे उठाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुस दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, सच हाथों पे उठाया जाता हूँ, दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को तो मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से भड़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुस्वा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ, किस बस में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। आज के दौर के दो लफ्ज़ जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हैं, एक है कुरान और एक है जिहाद। इस आयत ने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दो मज़लूमों को इनका हक दिला दीजिए। ये है आज के दौर का जिहाद। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमा दे।